एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के संक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर गोता लगाने वाले हैं जो सच में लिटरेचर की दुनिया में एक मील का पत्थर है। एक ऐसी किताब जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है और दिखाती है कि कहानियों ने सच्चाई को, असलियत को कैसे पकड़ा है, कैसे बयान किया है।
नमस्कार, और इस सफर में मैं भी आपके साथ हूँ। हम बात कर रहे हैं एरिक ऑरबाग की बहुत ही मशहूर किताब मिमेसिस, पश्चिमी साहित्य में यथार्थ का निरूपण की। ये शब्द मिमेसिस यूनानी है ना?
हाँ, यूनानी शब्द है। इसका मतलब है नकल, चित्रण या निरूपण। तो ये किताब यही सवाल पूछती है कि पश्चिम की कहानियों ने होमर के टाइम से लेकर, सोचिए, 20वीं सदी तक रियलिटी को कैसे पेश किया है।
और हाँ, श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि भाई इतनी पुरानी कहानियों, पुरानी किताबों पर इतनी बात क्यों, या आज क्यों जरूरी है?
बिल्कुल, देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये हमें सिखाती हैं कि साहित्य या कहानियां ये सिर्फ टाइम पास नहीं होती।
सही कहा।
ये एक जरिया है ये समझने का कि अलग अलग जमानों में लोगों ने दुनिया को कैसे देखा, उनके जज्बात क्या थे, जिसे हम सच कहते हैं उसको कैसे समझा। और कमाल की बात यह है कि यही समझ, पता है, हमें आज के मीडिया को, आज की फिल्मों को, वेब सीरीज को, अरे अपनी सोच को भी बेहतर समझने में मदद करती है।
बिल्कुल सही। तो चलिए पहले जबरदस्त किताब के लेखक से मिलते हैं, एरिक ऑरबैक। 1892 में बर्लिन में जन्मे थे, जर्मन यहूदी थे, भाषाविद और लिटरली क्रिटिक।
हाँ, और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठोर जर्मन अकेडमिक परंपरा में हुई थी, जहां भाषा के इतिहास को संस्कृति की आत्मा समझने की कुंजी माना जाता था। मतलब बहुत गहराई से पढ़ते थे।
लेकिन देखिए, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 1935 में नाजी जर्मनी में क्या हुआ, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया।
उनके यहूदी होने की वजह से।
हाँ बिल्कुल, और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। वो तुर्की चले गए इस्तांबुल, वहां उन्होंने पनाह ली। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिमेसिस जैसी महान किताब उन्होंने वहीं लिखी,
इस्तांबुल में निर्वासन के दौरान, 1942 से 45 के बीच, है ना?
हाँ, सोचिए जरा, यूरोप की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से दूर, अपने एकेडमिक सर्कल से कटे हुए, बस अपनी याददाश्त और जो थोड़ी बहुत किताबें वहां मिली उनके सहारे। ये अपने आप में कमाल की बात है।
और शायद, पता है, इसी दूरी ने, इसी अकेलेपन ने वो नजरिया दिया जो इस किताब को इतना खास बनाता है। वो छोटी मोटी एकेडमिक बहसों से ऊपर उठकर हजारों साल के लिटरेचर को एक साथ देख पाए।
बिल्कुल, उनके लिए ये सिर्फ एक किताब लिखना नहीं था, ये उस कल्चर को, उस संस्कृति को बचाने और समझने की कोशिश थी जिससे उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया था, खासकर उस दौर में जब सभ्यता ही खतरे में थी।
सही कहा। तो अब आते हैं किताब पर। मिमेसिस आखिर है क्या, क्या करती है ये किताब?
जैसा हमने कहा कि वेस्टर्न लिटरेचर में रियलिटी यानी यथार्थ को कैसे दिखाया गया है, उसके बदलते तरीकों का एक बहुत बड़ा सर्वे है। लेकिन ये कोई थ्योरी की मोटी किताब नहीं है कि पहले नियम बताएं फिर उदाहरण दें।
हाँ, और बैक का तरीका अलग है, वो सीधे टेक्स्ट में उतर जाते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, किसी कहानी या कविता का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और फिर उसका, आप कह सकती हैं, चीरफाड़ करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे शब्दों का चुनाव, सेंटेंस कैसे बने हैं, कहानी कैसे कही जा रही है, ये सब मिलकर उस जमाने की सोच, दुनिया देखने का उनका तरीका, सब खोल कर रख देते हैं।
हाँ, और उनका जो मुख्य तर्क है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो वाकई सोचने लायक है। वो कहते हैं कि पश्चिमी साहित्य का पूरा इतिहास असल में रियलिटी को दिखाने के तरीकों के लगातार विकसित होने की कहानी है। और ये विकास कैसा है? ज्यादा लोकतांत्रिक होने की तरफ।
ज्यादा लोकतांत्रिक, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि साहित्य धीरे धीरे उस पुराने नियम से आजाद हुआ जिसे ऑरबैक शैलियों का पृथक्करण कहते हैं, सेपरेशन ऑफ स्टाइल्स।
अच्छा, ये शैलियों का पृथक्करण, ये क्या बला थी, मतलब क्या था इसका?
देखिए, ये एक तरह का अलिखित नियम था पुराने जमाने में कि जो गंभीर विषय हैं, दुखद या महान विषय जैसे युद्ध, राजनीति, भगवान, ये सब सिर्फ ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए थे, राजा, नायक, देवता।
हाँ हाँ,
उन्हीं को भव्य, सीरियस भाषा में दिखाया जाता था। और आम लोग, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके दुख दर्द,
वो शायद कहानियों में आते ही नहीं होंगे, या आते भी होंगे तो
आते थे, लेकिन ज्यादातर मजाक उड़ाने के लिए, हल्के फुल्के अंदाज में। उन्हें कभी गंभीरता से, मतलब ट्रैजिक हीरो की तरह नहीं दिखाया जाता था।
अच्छा, तो फिर ये बदला कैसे?
और यही ऑरबैक का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। वो कहते हैं, इस सोच को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ था यहूदी ईसाई परंपरा का, खासकर ईसा मसीह की कहानी का।
ईसा मसीह की कहानी कैसे?
सोचिए ना, उस जमाने के हिसाब से ये कितना क्रांतिकारी था कि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा सत्य यानी ईश्वर और समाज की सबसे निचली हकीकत गरीबी, अपमान, एक दर्दनाक मौत, ये सब एक ही कहानी में पूरी गंभीरता के साथ मिल सकते हैं।
हाँ, ये तो है। मतलब ऊंच नीच का भेद मिट गया एक तरह से।
बिल्कुल, इस एक कहानी ने जैसे साहित्य के लिए नए दरवाजे खोल दिए। इसने दिखाया कि आम जिंदगी भी उतनी ही गहरी, उतनी ही गंभीर, उतनी ही ट्रेजिक हो सकती है जितनी राजा महाराजाओं की।
अच्छा, इसीलिए ऑर्बेक मानते हैं कि साहित्य धीरे धीरे ज्यादा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक होता गया।
हाँ, कहानियों का फोकस सिर्फ राजाओं और नायकों से हटा और आम इंसानों पर आया, व्यापारी, नौकर, किसान, मजदूर,
और उन्हें भी फिर पूरी गंभीरता से दिखाया जाने लगा, उनके दुख दर्द, उनके हालात।
हाँ, और उनके ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। तो मिमेसिस एक तरह से गंभीर साहित्य के आम आदमी तक पहुंचने की कहानी है।
वाह, और ये सफर कितना लंबा है? आपने कहा हजारों साल।
करीब 3000 साल। और मैं हमें प्राचीन यूनान के महाकवि होमर और बाइबल की कहानियों से शुरू करवाते हैं, फिर रोमन साम्राज्य, मध्य युग, रेनेसा।
रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल।
हाँ, और फिर आधुनिक युग से होते हुए 20वीं सदी के वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखकों तक ले जाते हैं।
और ये सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं है, है ना? वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे इतिहास बदला तो कहानियां भी बदली।
बिल्कुल, जैसे ईसाई धर्म का फैलना, देशों का बनना, व्यापार का बढ़ना, शहरों का उभरना, फ्रांस की क्रांति, इन सब ने कहानियां कहने के नए तरीके पैदा किए, हमें इंसानी जिंदगी को ज्यादा गहराई से देखना सिखाया।
चलिए इस लंबी यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पर जरा रुकते हैं। किताब का पहला ही चैप्टर, ओडिसियस का निशान, ये तो बहुत फेमस है।
हाँ, बहुत मशहूर है। यहाँ ऑर्बेक दो बहुत पुरानी और बहुत अलग स्टाइल की कहानियों की तुलना करते हैं।
पहली है होमर की ओडिसी से। सालों बाद जब ओडिसियस घर लौटता है तो उसकी बूढ़ी दाई उसे पहचान लेती है। कैसे? उसके पैर पर एक पुराने जख्म के निशान से।
हाँ, और ऑर्बेक दिखाते हैं कि होमर का स्टाइल कैसा है। सब कुछ सामने है, बिल्कुल रोशनी में, हर चीज साफ साफ, कोई रहस्य नहीं, कोई छुपी हुई गहराई नहीं।
अच्छा, मतलब निशान की कहानी भी पूरी डिटेल में बताते हैं।
हाँ, पूरी डिटेल में, कहाँ लगा, कैसे लगा, सब कुछ, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। पाठक को अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ सपाट, क्लियर। इसे वो फॉरग्राउंडेड कहते हैं।
और फिर इसकी तुलना वो करते हैं बाइबल से।
हाँ, बाइबल के पुराने नियम की एक कहानी से, जहाँ ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दो।
ओह हाँ, वो कहानी।
यहाँ अंदाज बिल्कुल उल्टा है। कहानी बहुत कम शब्दों में है, तनाव से भरी हुई। हमें पता नहीं चलता कि इब्राहिम के मन में क्या चल रहा है या इसहाक क्या सोच रहा है।
हाँ, बहुत कुछ अनकहा है, मतलब पाठक को सोचना पड़ता है।
बिल्कुल, इसमें एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई है। और बाइक कहते हैं कि ये दो तरीके, होमर वाला एकदम खुला स्पष्ट और बाइबल वाला गहरा रहस्यमयी फ्रॉट विद बैकग्राउंड, ये असलियत को दिखाने के दो बुनियादी रास्ते हैं और ये हमें आज तक कहानियों में मिलते हैं।
दिलचस्प। तो इस बुनियाद पर फिर आगे कैसे बढ़ती है कहानी?
आगे चलकर हम देखते हैं कि कैसे चीजें बदलती हैं। दूसरे अध्याय फॉर्चुनाटा में और बैक एक रोमन नॉवल सैटेरिकॉन को देखते हैं। इसमें आम लोगों की जिंदगी, जैसे एक अमीर पहले गुलाम रह चुके आदमी की पार्टी, उसका बड़ा मजेदार और सच्चा सा चित्रण है।
लेकिन फिर वही बात, ये चित्रण पुराने नियम के हिसाब से ही है, मतलब मजाकिया, व्यंग्य भरा।
हाँ बिल्कुल, इन आम किरदारों को कोई सीरियस वजन नहीं दिया गया और यहीं पर फिर ईसाई कहानी का असर दिखता है।
हाँ, वो ऊंच नीच का भेद मिटाने वाली बात।
हाँ, उसने रास्ता खोला कि आम जिंदगी को भी पूरी संजीदगी से देखा जाए। और यही ऑर्बेक एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, आलंकारिक व्याख्या, फिगरल इंटरप्रिटेशन।
फिगरल इंटरप्रिटेशन
ये क्या है?
ये मध्य युग के लोगों की सोच समझने में मदद करता है। वो मानते थे कि बाइबल के पुराने नियम की घटनाएं, लोग, वो असल में नए नियम की घटनाओं या लोगों की तरफ इशारा करती थी। उनकी आकृति या फिगर थी, जैसे मूसा एक तरह से ईसा मसीह के आने का संकेत थे।
अच्छा,
इससे इतिहास को एक गहरा, मतलब दैवीय मतलब मिल जाता था।
हाँ बिल्कुल, हर चीज किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगती थी।
फिर एक और बड़ा नाम आता है, दांते। उनका जिक्र भी है।
हाँ, अध्याय 8, फेरनाटा और कैवलकैंटे, दांते की डिवाइन कॉमेडी। दांते ने तो कमाली कर दिया, उन्होंने पुरानी क्लासिकल परंपरा और ईसाई सोच को मिला दिया।
कैसे? उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपने जमाने के असली लोगों को, नेताओं को, कवियों को, अपने दोस्तों और दुश्मनों को नरक और स्वर्ग में डाल दिया।
और उनके दुनियावी रूप, उनके जुनून, उनकी गलतियों को इतने भयानक यथार्थ के साथ दिखाया, बाप रे।
सच में? मतलब अपने टाइम के कंटेम्प्रेरी लोगों को?
हाँ, और अक्सर वो कोई बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं थे, आम लोग भी थे। उन्हें इतनी दुखद गंभीरता देकर दांते ने पुराने नियमों की धज्जियां उड़ा दी।
वाह, फिर रनेसा में शेक्सपियर आते हैं।
हाँ, शेक्सपियर द वेरी प्रिंस अध्याय, वो तो शैलियों को मिलाने के मास्टर थे। दुख और कॉमेडी, ऊंचे और नीचे तबके के लोग, शायरी वाली भाषा और आम बोलचाल, सब एक ही नाटक में।
राजा और विदूषक एक ही मंच पर, एक जैसे इंसानी जज्बात महसूस करते हुए।
बिल्कुल, दुनिया अब ज्यादा जटिल, ज्यादा मिलीजुली नजर आने लगती है उनके नाटकों में।
और फिर सर्वेंटीज का डॉन क्विक्सोट।
हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था शायद।
हाँ, आधुनिक यथार्थवाद की तरफ एक और बड़ा कदम। यहाँ डॉन क्विक्सोट की वो ख्याली आदर्शवादी दुनिया और उसका साथी सांचो पांजा, जो एकदम प्रैक्टिकल है, जमीनी आदमी,
उनके बीच लगातार एक टकराव चलता रहता है ना। हाँ, एक संवाद, एक टेंशन। असलियत अब कोई एक सीधी साधी चीज नहीं रही, वो कई परतों वाली हो गई, उसे समझने के कई नजरिए हो गए। रोजमर्रा की दुनिया ही सच और भ्रम के बीच की एक दुखद मजाहिया खोज का मैदान बन जाती है।
लेकिन असली क्लाइमैक्स शायद 19 सेंचुरी में आता है, जिसे ऑरबैक आधुनिक यथार्थवाद का जन्म मानते हैं। अध्याय 18, होटल दे ला मॉल में, स्टेंधाल और बालजैक जैसे लेखक।
हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर है।
क्यों, ऐसा क्या खास था इन उपन्यासों में?
ऑरबैक के मुताबिक यहाँ पहली बार किरदारों को उनके समय के ठोस, रियल, बदलते हुए ऐतिहासिक और सामाजिक माहौल में पूरी तरह से डुबोकर दिखाया गया।
मतलब कोई उदाहरण?
जैसे स्टेंडाल का हीरो है जूलियन सोरेल, द रेड एंड द ब्लैक में। उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो क्या चाहता है, ये आप तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक आप नेपोलियन के बाद वाले फ्रांस के समाज को, उसके क्लास टेंशन को न समझें।
अच्छा, मतलब किरदारों की किस्मत अब सिर्फ उनके कर्मों पर नहीं, बल्कि समाज और इतिहास की ताकतों पर भी निर्भर करती दिखती है।
बिल्कुल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक वर्ग, ये सब अब किरदारों की जिंदगी तय कर रहे हैं। यही है आधुनिक ऐतिहासिक यथार्थवाद।
यानी औसत आम इंसान का गंभीर, अक्सर दुख भरा चित्रण, जो इतिहास की बड़ी लहरों का हिस्सा भी है और उनसे बनता बिगड़ता भी है। ये तो आज के नॉवेल्स और फिल्मों के बहुत करीब लगता है।
हाँ, बिल्कुल। और इस सफर का आखिरी पड़ाव और बैक हमें दिखाते हैं आधुनिकतावाद में, 20वीं सदी, अध्याय 20, भूरा मोजा, वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस जैसी किताबें।
यहाँ क्या बदलता है?
यहाँ असलियत दिखाने का फोकस बाहरी दुनिया से हटकर इंसान के मन की भीतरी निजी दुनिया पर चला जाता है, चेतना पर।
अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं।
हाँ, वही। अब रियलिटी हमें किरदारों के दिमाग के अंदर से दिखती है, उनकी सोच, यादें, एहसास, सब जैसे बह रहा है। ये बिखरावा होता है टुकड़ों में, जैसे हमारे अपने विचार होते हैं।
तो बाहरी ऑब्जेक्टिव सच्चाई जैसे गायब हो जाती है।
हाँ, वो धुंधली पड़ जाती है, उसकी जगह कई व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव रियलिटीज ले लेती हैं। और बैक इसे रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने की पराकाष्ठा तो मानते हैं, लेकिन एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि क्या इससे हम एक साझा बाहरी सच्चाई को पकड़ने से चूक रहे हैं?
वाह, क्या जबरदस्त यात्रा है ये। मतलब होमर से लेकर वर्जीनिया वुल्फ तक, रियलिटी दिखाने का तरीका कितना बदला है।
बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालें, कुछ की थीम्स, तो क्या होंगी?
एक तो वही क्लासिकल सोच के गंभीर विषय सिर्फ बड़ों के लिए, और ईसाई कहानी जिसने इस बंटवारे को तोड़ा, आम जिंदगी को भी गंभीरता मिली।
हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे साहित्य ज्यादा लोकतांत्रिक हुआ। अगर हम अपने यहाँ देखें तो प्रेमचंद की कहानियों में आम आदमी का नायक बनना शायद इसी बदलाव का एक उदाहरण है।
बिल्कुल। दूसरा, यही साहित्य का लोकतंत्रीकरण, कैसे कहानियों का दायरा राजा रानी से बढ़कर आम लोगों तक पहुंचा, उन्हें भी नायक जितनी ही गंभीरता और गहराई दी गई। सोचने वाली बात है कि आज की हमारी फिल्में या वेब सीरीज वो कहाँ खड़ी हैं इस मामले में।
सही सवाल है। तीसरा, ये कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो अपने समय के समाज की सोच का आईना होती हैं, है ना? लिटरेरी स्टाइल सिर्फ सजावट नहीं है, वो दुनिया को देखने का नजरिया दिखाते हैं।
हाँ, जैसे 19वीं सदी का नावल फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ा था, वैसे ही शायद भारत का बंटवारा या आजादी का संघर्ष, उसने हमारे साहित्य को एक खास शक्ल दी होगी।
जरूर दी होगी। चौथा, वो होमर और बाइबल वाला फर्क, यानी सब कुछ साफ साफ दिखाना बनाम बहुत कुछ छुपाकर गहराई पैदा करना, फोरग्राउंडिंग वर्सेस बैकग्राउंडिंग।
हाँ, कुछ कहानियां सब बता देती हैं बिल्कुल क्लियर, और कुछ इशारे करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। दोनों के अपने मजे हैं।
और पांचवा?
पांचवा, इंसान के अंदरूनी दुनिया पर बढ़ता फोकस, साहित्य का बाहरी घटनाओं से हटकर मन के भीतर झांकना। ये आज कितना रेलेवेंट लगता है ना, जब हम सब अपनी भावनाओं, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले से कहीं ज्यादा बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, इस किताब में सचमुच कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे वो शुरुआती आइडिया कि रियलिटी दिखाने के दो मूल तरीके हैं, एक सब कुछ खोल कर रख देने वाला क्लियर, और दूसरा रहस्यमयी गहरा।
हाँ, या ये कि कैसे ईसा मसीह की कहानी ने, जिसमें ऊंच नीच का भेद मिट गया था, आम जिंदगी को भी गंभीर साहित्य का विषय बना दिया। ये एक तरह से लिटरेचर में इक्वालिटी लाने जैसा था।
और वो 19वीं सदी वाले नॉवेल्स की बात कि पहली बार आम लोगों को उनके पूरे सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में उनकी मुश्किलों और त्रासदियों के साथ गंभीरता से दिखाया गया। ये एहसास कि हम सब अपने समय की उपज हैं, हिस्ट्री का हिस्सा हैं।
और ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, है ना? इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे? क्या लगता है?
देवे, हम सोच सकते हैं, अच्छा ये किस तरह की रियलिटी दिखा रही है? क्या ये चीजों को बहुत सिंपल बना रही है होमर की तरह, या कॉम्प्लेक्सिटी और गहराई दिखा रही है बाइबल की तरह?
हाँ, और क्या ये अपने किरदारों को, खासकर आम लोगों को, गंभीरता से ले रही है या उनका मजाक बना रही है? किसी भी पॉपुलर वेब सीरीज को इस नजर से देखना काफी मजेदार हो सकता है।
बिल्कुल, और ये हमें ज्यादा हमदर्द भी बना सकता है। नहीं, ये किताब दिखाती है कि कैसे कहानियों ने धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी में गहराई देखना सिखाया जिन्हें पहले कोई पूछता नहीं था।
सही बात है, ये हमें भी अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड के हों, ज्यादा गहराई से देखने के लिए उकसाता है। मीडिया में जो स्टीरियोटाइप होते हैं उन पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है।
और जो लोग लिखते हैं, कहानी कहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उनके लिए भी इसमें सीखने को बहुत कुछ है। कब चीजों को साफ बताना है फोरग्राउंड, और कब इशारों में छोड़ना है बैकग्राउंड, ताकि असर ज्यादा हो।
हाँ, कैसे बड़ी बातों, उच्च विजन को छोटी रिलेटेबल कहानियों, निम्न अनुभव से जोड़कर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है।
और आखिर में ये हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। असलियत कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, वो बदलती रहती है, और उसे बनाने में कहानियों का बहुत बड़ा हाथ होता है।
ये हमें अपनी आज की मान्यताओं पर भी सवाल उठाने को कहता है। क्या पता 100 साल बाद लोग हमारी असलियत को कैसे देखेंगे।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि रियलिज्म कोई एक ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक बहती नदी है जो समय के साथ अपना रास्ता, अपना रूप बदलती रहती है। और कैसे ये सफर इंसान के मन की गहराइयों तक पहुंचा, ये आज भी बहुत मायने रखता है।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि कैसे एक लेखक का निर्वासन, उसका अकेलापन, उसे इतना बड़ा, इतना गहरा नजरिया दे सकता है। और ये बात पक्की हुई कि साहित्य वाकई समाज का एक्सरे है, दिखाता है कि हम अंदर से क्या सोचते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, है ना? हमारी आज की दुनिया जो इतनी डिजिटल है, इतनी तेज है, इन्फॉर्मेशन से भरी है, और शायद पहले से ज्यादा बटी हुई भी, भविष्य के कहानीकार हमारी इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को कैसे दिखाएंगे? कौन सी नई स्टाइल जन्म लेंगी इसे पकड़ने के लिए? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्स्ट्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।